का था, रूह वही रूह नया।
सुप्रिया और सिंहासन बत्तीसी। सुप्रिया और सिंहासन बत्तीसी में अभी तक आपने सुना कि कैसे हंसती खेलती सुप्रिया घर में डकैती के बाद सहम सी गई थी। उसका मन हल्का करने और वातावरण बदलने के लिए दादू दादी और सुप्रिया उनके गांव के घर में आ गए। गांव के घर के बाहर एक नीम का पेड़ है जिस पर एक काबुलीवाला आकर बच्चों को कहानियां सुनाता है। कल काबुलीवाला से कहानी सुनने के बाद सुप्रिया को समझ में आया कि हर किसी के अंदर दो आवाजें होती हैं। एक अच्छी आवाज जो हमसे अच्छे काम करवाती है और एक बुरी आवाज जो हमसे बुरे काम या गंदे काम करवाती है। सुप्रिया को रह रह कर ये ख्याल आ रहा था कि उसके घर पर जो डकैत आए थे उनके अंदर की बुरी आवाजों ने अच्छी आवाजों को मार ही दिया होगा, तभी वह इतने सारे बुरे काम करते ही जा रहे हैं। इसी सोच में सुप्रिया बैठी थी कि अचानक उसे काबुलीवाला के डमरू की आवाज सुनाई दी। सुप्रिया जानती थी कि वह कुछ ही दिनों में भोपाल चली जाएगी। वहाँ ना काबुलीवाला रहेगा और ना उसकी कहानियाँ। सुप्रिया भागते हुए नीम के पेड़ के नीचे जा पहुंची। आज वह बहुत खुश लग रही थी। उसकी आंखों में अजब सी चमक थी। वह काबुलीवाला को देखकर मुस्कुराई और बोली, थैंक यू। काबुलीवाला भी मुस्कुराती हुई सुप्रिया को देखकर खुश था। उसने एक बार फिर अपना डमरू बजाया और कहानी शुरू कर दी। राजा विक्रमादित्य के राज में उज्जैन नगरी विद्वानों और ज्ञानियों का केंद्र थी। राजा विक्रमादित्य विद्वानों का बड़ा सम्मान करते थे। एक दिन विक्रमादित्य वन में ध्यान लगाने पहुंचे तो देखा दो प्रकांड पंडित आपस में बातें करते वन के रास्ते से गुजर रहे थे। राजा ने सोचा इनकी बातें सुननी चाहिए। उनमें से एक पंडित अपने ज्ञान के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। वह बोला, ज्ञान सागर ऐसा होना चाहिए जो प्रत्येक की समझ में आने वाला हो, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया जा सके। जरा अपने ज्ञान को कसौटी पर घिसकर तो दिखाओ, दूसरे पंडित ने धीमे से स्वर में बोला। पहला पंडित बोला, इसमें क्या कठिनाई है, मैं ठहरा ज्योतिष विद्या का ज्ञाता, किसी भी व्यक्ति के हाथ और पैर की रेखाएं देखकर उसके भूतकाल वर्तमान और भविष्यकाल का हाल बता सकता हूँ। जैसे ही कोई व्यक्ति मिलता है मैं अपने ज्ञान का तुम्हें प्रमाण दे दूंगा। उसी समय अचानक उसका ध्यान जमीन पर पड़ी किसी मनुष्य के पद चिन्हों पर पड़ा। उन पद चिन्हों में कमल की आकृति उसे नजर आ रही थी। उन पद चिन्हों को देखकर पहले पंडित को अपना ज्ञान का सागर अपने साथी को दिखाने का अवसर प्राप्त हो गया। पहला पंडित तुरंत बोला, अरे ये लो, इन पद चिन्हों को देख रहे हो, किसी मनुष्य के हैं, लेकिन यह किसी साधारण मनुष्य के नहीं है। मेरे ज्ञान के अनुसार यह पद चिन्ह किसी राजा के होने चाहिए। हो ना हो, कोई राजा यहाँ से अभी नंगे पांव चल कर गया है। पहले पंडित ने अपने साथी को लिया और उसका अनुसरण करता हुआ आगे बढ़ने लगा। काफी दूर आगे जाने पर उन दोनों पंडितों को एक लकड़हारा मिला जो पेड़ के नीचे बैठा विश्राम कर रहा था। उसके समीप ही लकड़हारे द्वारा काटी गई लकड़ियां रखी थी। ज्ञानी पंडित ने लकड़हारे से पूछा, तुम यहां कब से बैठे हो और क्या काम कर रहे हो? क्या तुमने इधर से कोई मनुष्य को जाते हुए देखा है?
जी जी प्रणाम पंडित जी, मैं यहाँ दिन निकलने के पहले ही पहुँच गया था।
आदमी तो क्या, मैंने किसी पशु या पक्षी को भी यहाँ से गुजरते नहीं देखा है, लकड़हारे ने जवाब दिया। लकड़हारे की बात सुनकर ज्योतिषी पंडित सोच में पड़ गया। विचार करके उसने लकड़हारे से कहा,
अच्छा भैया, जरा अपने पांव तो दिखाना।
बहुत आनाकानी करने के बाद लकड़हारे ने अपने पैर दिखाना के लिए तैयार हो गया। उसके पांव के नीचे कमल की आकृति बनी हुई थी। यह देखकर ज्योतिषी पंडित सोचने लगा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ज्योतिषी ज्ञान के हिसाब से तो ऐसे पैर राजा के होने चाहिए। ज्योतिषी पंडित बुरी तरह चकरा गया था। फिर उसने लकड़हारे से पूछा,
तुम कहाँ रहते हो?
लकड़हारा बोला, जी सरकार, मैं उज्जैन नगरी में रहता हूँ और अपने पिताजी के दिनों से यह लकड़ियां काटने का काम कर रहा था। अब ज्योतिषी पंडित और भी परेशान हो गया। उसने लकड़हारे को टटोलने वाले भाव से देखा और एक और प्रश्न किया,
ये काम करते हो? यह तो बड़े परिश्रम का काम है, तुम्हें बहुत कष्ट होता होगा यह काम करने में।
ज्योतिषी पंडित सोच रहा था कि लकड़हारा कहीं अपना वास्तविक परिचय छुपा तो नहीं रहा, कहीं ये किसी राज्य का राजा तो नहीं और भेष बदल कर यहाँ बैठा है। लेकिन लकड़हारे ने बड़े निर्भय स्वर में उत्तर दिया,
जी पंडित जी, अजी इसमें कष्ट कैसा, यह तो हमारा पुश्तैनी काम है। मेरे पिताजी दादाजी सब यही किया करते थे।
लकड़हारे का ऐसा उत्तर सुनकर ज्योतिषी पंडित का चेहरा उतर गया। रही सही आशा की किरण भी डूब गई। वह मुंह लटकाकर वहां से लौट पड़ा। उसके साथी पंडित ने कहा,
हाहा, अब कहो क्या कहते हो? तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, पहली ही परीक्षा में तुम तो खोटे सिक्के निकले।
ज्योतिषी पंडित ने बड़े उदास स्वर में अपने साथी पंडित से बोला,
हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन यह लक्षण तो इतने प्रबल हैं कि किसी साधारण से साधारण ज्योतिष ज्ञान की पुस्तक में भी मिल जाएंगे।
मैं सोचता हूँ प्रमाण के लिए मैं एक और पैर देखूं। यदि उस पैर में विपरीत लक्षण मिलते हैं तो मैं समझ जाऊंगा ज्योतिष विद्या झूठी है। जितनी भी ज्योतिष विद्याओं से संबंधित मेरे पास पुस्तकें हैं सब को जलाकर नष्ट कर दूंगा। मुझे थोड़ा समय दो मित्र, मेरे साथ उज्जैन नगरी चलो। मैं सोचता हूँ राजा विक्रमादित्य के पैरों को देखना चाहिए, उनके पांव में यह लक्षण है या नहीं।
हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तुम्हारे साथ उज्जैन चलूंगा, पहले पंडित ने अपने मित्र पंडित से बोला।
उसी समय दोनों पंडित मित्र उज्जैन नगरी को जाने वाली दिशा में निकल पड़े। दोनों ने उज्जैन पहुंचकर राजा के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त करी। उन्हें तुरंत आज्ञा प्रदान कर दी गई। राजा विक्रमादित्य दोनों पंडितों से एकांत में मिले।
ज्योतिषी ज्ञानी पंडित ने राजा के समक्ष पहुंचकर निवेदन भरे स्वर में कहा, हे राजन, मैं आपके पैर के तलवे देखकर अपने मौजूद लक्षण से संतुष्ट होना चाहता हूँ। राजा विक्रमादित्य मन ही मन मुस्कुराए और निरीक्षण के लिए अपने पैर आगे बढ़ा दिए। पंडित को यह देखकर जबरदस्त धक्का लगा कि राजा के पैरों पर वैसे कोई लक्षण नहीं है। उनके पैर साधारण आदमी के जैसे थे, पैरों पर कमल जैसी कोई भी आकृति नहीं थी। ज्योतिष ज्ञानी पंडित बहुत उदास हो गया। उसे उदास देखकर राजा विक्रमादित्य ने पूछा, ब्राह्मण देवता, क्या बात है? आपने स्वयं आग्रह करके मेरे पांव का निरीक्षण किया और अब उन्हें देखने के बाद आप दुखी हो रहे हैं? मुझे यह समझाइए। ज्योतिष ज्ञानी पंडित ने राजा को सारी बात बताई। राजन, जिस व्यक्ति के पांव में राजा बनने के लक्षण हैं, उसे मैंने जंगल में लकड़ियां काटते देखा है, और जिसके पांव में ऐसे लक्षण नहीं है, यानी कि आप, वह इतने बड़े साम्राज्य का राज सम्मुख भोग रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है? क्या पुस्तकें गलत ज्ञान देती हैं? नहीं, पुस्तकों का ज्ञान सदा सही होता है, राजा ने कहा, लेकिन उस पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ विश्वास ना करने वाले का ज्ञान अधूरा होता है। पंडित, तुम्हें अपने ऊपर तो गर्व था, लेकिन जिन पुस्तकों ने तुम्हें इस लायक बनाया, उन पुस्तकों के ज्ञान पर विश्वास नहीं था। राजा विक्रमादित्य ने एक चाकू से अपने पैर की खाल निकाल दी। अब कमल का चिन्ह स्पष्ट दिखने लगा। ज्योतिष ज्ञानी पंडित आश्चर्यचकित होकर राजा का मुंह देखता रह गया। राजा ने कहा, जंगल में जिस लकड़हारे के पैर तुमने देखे थे, वह मैं ही था। आप अपनी विद्या ज्ञान और पुस्तकों पर संदेह करने लगे, तो मैंने सोचा आपका भ्रम मिटाना चाहिए। मैंने जंगल में तुम दोनों मित्रों की बातें सुन ली थी। मैं जानता था कि तुम मेरे पास आ रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम लोग आ गए, मैंने अपने पैर के तलवे पर खाल की परत चढ़ा ली और बैठ गया। तुम्हारा ज्ञान अधूरा है ब्राह्मण देवता, क्योंकि जिसका ज्ञान पूरा होता है, उसे ऐसे परीक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती। राजा विक्रमादित्य ने ज्ञानी पंडित को समझाते हुए बोला। राजा के मुख से ऐसे शब्द सुनकर ज्योतिषी ज्ञानी पंडित बहुत शर्मिंदा हुआ। फिर भी अपने समक्ष आए पंडितों को राजा ने पुरस्कार देकर विदा किया। इस कथा को सुनाकर पुतली ने कहा, कहो राजा भोज, क्या तुमने कभी इस तरह किसी ज्ञानी के अधूरे ज्ञान के प्रति सीख दी है? राजा भोज उस दिन भी पुतली की कहानी सुनकर अपने महल वापस लौट गए। कहानी सुनाकर काबुली वाले ने डमरू बजाया और चिल्ला चिल्ला कर बच्चों से कहने लगा, पढ़ाई करो पढ़ाई, पढ़ाई करो पढ़ाई, उसी से लड़ पाओगे जिंदगी की हर लड़ाई। समझे बच्चों, पढ़ाई करो पढ़ाई, उसी से लड़ पाओगे जिंदगी की हर लड़ाई। काबुली वाला वहां से चला गया। सभी बच्चे भी अपने अपने घर चले गए। सुप्रिया ने घर वापस आकर दादी से बताया, दादी, काबुली वाला आज बोल रहा था पढ़ाई करो पढ़ाई, उसी से हम लड़ पाएंगे जिंदगी की हर लड़ाई। आज की कहानी सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बुक्स भी मुझे याद कर रही हैं। दादी, अब हमें भोपाल चलना चाहिए ना, प्लीज।
हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही लगता है,
दादी ने सुप्रिया की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला। दादी और सुप्रिया बातें कर रहे थे, उसी समय भोपाल से मम्मी का फोन आया। मम्मी दादी से बोली,
भोपाल में सब ठीक है माताजी, पर घर आप लोगों के बिना बहुत खाली खाली लगता है।
हाँ दीपिका, अब हम लोग भी घर की बहुत याद कर रहे हैं। अब हमें भी यहाँ गांव में अच्छा नहीं लग रहा। अभी मैं और सुप्रिया वही बात कर रहे थे।
मम्मी तुरंत बोली,
ओ मम्मी जी, सुप्रिया वही है क्या? आप उसको फोन दीजिए, एक गुड न्यूज सुनाती हूँ।
सुप्रिया ने कूद कर दादी से फोन लिया और बोली,
हेलो मम्मी, मैं सुप्रिया बोल रही हूँ।
मम्मी ने सुप्रिया को बताया,
सुप्रिया, देर इज अ गुड न्यूज, स्कूल से मैसेज आ गया है, स्कूल जल्द ही इस कमिंग मंडे को रीओपन होने वाले हैं। तो अब आपकी समर वेकेशंस फिनिश। पापा को मैं एक दो दिन में कार बुक करने को बोलूंगी और आप लोगों को फोन करवा दूंगी। दादी दादू के साथ आप वापस भोपाल आ जाइए। बाय।
ओके मामा, बाय।
और फोन रखते साथ ही सुप्रिया चिल्लाई,
हुर्रे, हम भोपाल वापस जा रहे हैं दादी, हुर्रे।